नमः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೀವ ಕಿಸ್ ಗತಿ ಸೆ ಕಿಸ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮೇ ಮರಣ ಕರ್ ಔರ್ ಕಿಸ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಸಹಿತ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ಕಿಸ್ ಗತಿ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ ಯಹ ಚಾರ್ಟ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ जीव सिद्धांत चर्चा का प्रथम चार्ट है पेज नंबर 6 पर नरक गति का चार्ट हो चुका है तिरंश गति का चार्ट लगाना है नरक गति संबंधी विशेष बातें ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है नरकों में चार ही गुणस्थान होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चार गुणस्थान होते हैं किंतु मरण के काल में पहला दूसरा और चौथा होता है कहाँ पर बता रहे हैं नरक गति में नरक गति में पहला दूसरा चौथा गुणस्थान में जीव मरण करते हैं किंतु सात नरकों में एक नरक की व्यवस्था ऐसी है कि वे नारकी जीव सातवें नरक वाले चौथे गुणस्थान में मरण नहीं कर सकते तो सातवें गुणस्थान में कितने गुणस्थान हैं सातवें नरक में कितने गुणस्थान हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पर्याप्त अवस्था में सभी गुणस्थान हैं परंतु मरण के काल में कितने गुणस्थान बनेंगे उसके एक ही गुणस्थान बनेगा सातवें नरक से मरण करने वाला नारकी जीव दूसरे गुणस्थान में भी मरण नहीं करेगा और चौथा नरक में भी गुणस्थान में भी मरण नहीं करेगा किस गुणस्थान में मरण करेगा नियम से पहले नरक में गुणस्थान में मरण करेगा ये ध्यान रखना है बाकी शेष नरकों में पहले नरक से लेकर छठे नरक तक के नारकी जीव पहले गुणस्थान में भी मरण कर सकते हैं दूसरे गुणस्थान में भी मरण कर सकते हैं और चौथे गुणस्थान में भी मरण कर सकते हैं नरक गति संबंधी इतनी विशेषता ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखेंगे पहले से छठे नरक तक के नारकी जीव एक दो और चार में मरण भी कर सकते हैं और पर्याप्त अवस्था में इन चार गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान में वे रह भी सकते हैं रहने की अपेक्षा से और सातवें नरक में रहने की अपेक्षा से चारों गुणस्थान हैं, लेकिन मरण की अपेक्षा से पहला गुणस्थान एक ही है, इतना ध्यान में रखना है। अब आप आगे बढ़ते हैं त्रिरंच गति में, पेज नंबर 7। त्रिरंच गति निर्गमन करने वाला जीव, यहाँ पर दो प्रकार के जीवों के संबंध में कथन है। संगी, सम मैंने क्या, संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्तक, और कैसा जीव, संख्यात वर्षायुष्क यानी कर्मभूमि का जीव। संख्यात वर्षायुष्क कहने से कर्मभूमि और असंख्यात वर्षायुष्क कहने से भोग भूमि समझना चाहिए, अंडरस्टैंड। और संगी पंचेंद्री पर्याप्तक सम्मूर्छन संख्यात वर्षायुष्क वाला जीव, ये कौन, कर्म भूमि का कौन है, ये संगी पंचेंद्री है, परंतु क्या है, गर्भज नहीं है, पर्याप्तक है, यानी एक साथ दो जीवों का कथन यहाँ चलेगा। संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक जीव का और संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीव का कथन चलेगा। यदि ये दोनों जीव पहले गुणस्थान में मरण करते हैं तो एक उदाहरण भी लेकर के चले साथ में, क्योंकि ये तो एक उसका नाम हो गया, उदाहरण के लिए एक ले ले, संगी पंचेंद्री गर्भज हो तो जलचरों में गर्भज भी होते हैं कि नहीं, जलचर थलचर नवचर ऐसे तीन प्रकार के जीव हैं, थलचर थल में रहने वाले, जलचर जल में रहने वाले, नवचर आकाश में उड़ने वाले, इनके तीन तीन भेद है कि नहीं, सम्मूर्छन गर्भज और गर्भज ने गर्भज में दो, हाँ जरायुज और अंडज और पोत, ये गर्भ के जन्म के भेद हैं। सम्मूर्छन एक अलग से है, अलग से सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन जीवों में किसको ले लें, संगी पंचेंद्री गर्भज सम्मूर्छन किसको लिया जा सकता है, हाँ स्वयंभू रमन समुद्र का उदाहरण के लिए एक आद को लेना है अपने को, वो जलचर है और जलचर में स्वयंभू रमन समुद्र का वह राघव मत्स्य सम्मूर्छन है, उसका जन्म कोई गर्भ से नहीं हुआ है, वो ऐसे ही वातावरण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेता है, वो सम्मूर्छन कहलाता है, सम्मूर्छन है वो है? मेंढक भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर उत्कृष्ट जीव को ले रहे हैं क्योंकि उसका सनन भी वज्रशिव नारा सनन होता है, मेंढक के लिए कोई भरोसा नहीं कौन सा सनन होगा। अब चलते, नरक जाने वाला भी तो होना चाहिए ना जीव, तो सम्मूर्छन जीव राघव मत्स्य को लेकर के चलते हैं। और एक और उदाहरण साथ में लेते हैं, संगी पंचेंद्री गर्भज का कौन सा ले लें, तेर सातवां नरक तक जाता है, तेर को हाईएस्ट सौनन पांचवें नरक तक जहां तक जाता है वो शेर, इसलिए उसको न लेकर के अपन दूसरे को लेते हैं कोई, उसमें जलचर में सम्मूर्छन भी हैं और अंडज भी हैं, अंडज कोई मछली है मान लो, वो गर्भज हो गया, फिर जो अंडा देता है वो गर्भज ही कहलाता है। तो ऐसा कोई एक मछली जो जिसको वज्रशिव नारायण सनन हो और वह गर्भज हो, ऐसा भी हो सकता है, हाँ हाँ ऐसा कोई हो सकता है। अब ये मगर भी अंडज है तो गर्भज है, संगी पंचेंद्री है, उसको भी लिया जा सकता है मान के चले, हाँ हाँ वो बात अलग है, लेकिन जो नरक जा सकता है उसको ले लेंगे हम, सामान्यतः नरक भी जा सकता है, गर्भज है तो नरक भी जाएगा। तो ऐसे जीव को लेके चलते हैं, किस गुण स्थान में मरण कर रहे हैं ये दोनों जीव। हाँ, पहले गुण स्थान में मरण किया, कितने गतियों में जा सकते हैं? चारों गतियों में जा सकते हैं। नरक में जाएंगे तो यदि वज्र वृषभ नारासनधारी हो वो तिर्यंच, तो सभी नरकों में जाएगा। तिर्यंच गति में जाएगा तो सभी संख्यात वर्षायुष्क व असंख्यात वर्षायुष्क यानी कर्म भूमि भी और भोग भूमि भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भ्रमण का वह राघव मत से मरकर भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि में भी उत्पन्न हो सकता है, सभी नरकों में भी उत्पन्न हो सकता है, स्वर्गों में उत्पन्न होगा। तो क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए भवनत्रिक से लेकर अधिक से अधिक 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होगा। सहनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नारासनन। वज्र ऋषभ नारासनन होकर के भी कहां तक जाएगा? 12वें स्वर्ग तक। क्यों जाएगा? मिथ्यात्व के कारण से जाएगा। और यदि सम्यक दृष्टि हो या अनुवृत्ति हो तो 16वें स्वर्ग तक जाएगा। फर्क ये पड़ेगा, वज्र ऋषभ नारासनधारी है, नरकों में तो सभी नरकों में जा रहा है, स्वर्गों में 12वें स्वर्ग तक ही जा रहा है। क्या बात है, 16वें स्वर्ग तक तो जाना चाहिए था। तो वृत्तों की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग तक जाएगा, और वे वृत्त भी मतलब उससे रहित हो, सम्यक तो से रहित हो, तो वो कहां तक जाएगा? 12वें तक ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव 12वें तक ही जाता है। तिर्यंच हो या गृहस्थ हो 12वें तक ही जाते हैं। सम्यक तो चाहिए, 12वें स्वर्ग से ऊपर उठने के लिए सम्यक दर्शन नियम से चाहिए। तिर्यंच गति में जाएंगे तो संख्यात वर्षायुष्क तिर्यंचों में सभी में जा सकेगा। किसकी बात चल रही है? त्रिरंच गति में राघव मत्स्य का और एक गर्भज संगी पंचेंद्री वज्रषभ नारासनधारी त्रिरंच का। सभी संख्यात वर्षायुष्क यानी क्या हो गया, क्या क्या आ गया इसमें? दोनों सभी आ गए, मतलब सभी, इस शब्द से क्या लेना? सभी का मतलब कर्म भूमि में जितने प्रकार की वेराइटी है त्रिरंच प्राणियों की, यहां विकलत्रय भी है, भोग भूमि में विकलत्रय नहीं है, वहां संगी पंचेंद्री के अलावा कोई जीव नहीं, असंगी पंचेंद्री भी नहीं है। तो भोग भूमि में जाएगा तो संगी पंचेंद्री तिर्यंच बन सकेगा वो, और कर्म भूमि में जाएगा तो द्विइंद्री तीन इंद्री में भी जा सकता है, एक इंद्री में भी जा सकता है, सब में जा सकता है। कर्म भूमि के कितने भेद बन गए थे वो, ये देखो पहला चार्ट पेज नंबर 4 का, भोग भूमि के 4 भेदों को छोड़कर बाकी सभी तो 84 कितने भेद हैं टोटल 85 में से 4 छोड़ दो, भोग भूमि के भेद 81 भेदों में सब में जा सकता है, 81 भेदों में सभी में जा सकता है। दिख रहा है प्रकाश है। क्या? नहीं नहीं दिख रहा, लाइट है। 4 भेद घटाकर सभी भेदों में जा सकता है, ये कर्म भूमि के त्रिरंचों में कहा गया। मनुष्यों में जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये दोनों तिरिंच? पहले गुणस्थान में मरण कर रहा है तो कहाँ जाएगा? सभी संख्यात वर्षायुष्क में मनुष्य बनेगा। मनुष्य गति में सभी संख्यात और शायुष के अनेक कर्म भूमि का मनुष्य कहीं का भी बन सकता है। कर्म भूमि कितनी है? 170 170 कर्म भूमि है मनुष्य गति के, तो सब में जा सकता है। विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र 5, ऐरावत क्षेत्र 5, ये कर्म भूमियाँ हैं, यहाँ पर जन्म ले सकता है। हाँ, भोग भूमि में वह किस परिस्थिति में जाता है? तिर्यंच भोग भूमि में जाएगा। यदि तिर्यंच बनेगा तो वह दान दानानुमोदना, सुपात्र दान और सुपात्र दान की अनुमोदना करने से सुभोग भूमि में जाता है, और यह कुभोग भूमि में भी जा सकता है। दान दानानुमोदना कुपात्र में हो तो कुभोग भूमि में भी उत्पन्न हो सकता है। रागोमत्स्य कर्म भूमि में है, और कर्म भूमि में दो प्रकार के सुपात्र हैं। उत्तम पात्र को छोड़ो, मध्यम सुपात्र और जगन्य सुपात्र दो हैं। रागोमत्स्य करेगा, दूसरा रागोमत्स्य कोई चतुर्थ गुण स्थान वाला हो तो उसके लिए भोजन ला करके दे सकता है, या कोई नहीं मिला तो अनुमोदना भी कर सकता है, साक्षात भी दे सकता है, अनुमोदना भी कर सकता है। एक मत्स्य दूसरे मत्स्य को उपकार कर सकता है कि नहीं? तिर्यंच है वो, बच्चों को जन्म देने के बाद कितना पालन पोषण करते हैं वो, ये क्या उपकार नहीं? ऐसा दूसरे पर भी वो उपकार कर सकते हैं, भोजन ला करके खिला सकते हैं। ऐसे पात्र बुद्धि से, सुपात्र बुद्धि से जगन्य सुपात्र चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मत्स्य, और यह स्वयं पहले गुणस्थान वाला मत्स्य, पहले गुणस्थान वाला मत्स्य यदि चतुर्थ गुणस्थान वाले जगन्य सुपात्र रूप चतुर्थ गुणस्थान वाले मत्स्य को आहार ला करके खिलाएगा तो दान माना जाएगा। देखो वो संबंध नहीं है। देखो अनुवृत कई प्रकार के होते हैं। कव्वे का मांस का त्याग किया, बाकी मांस का त्याग नहीं किया था, ये भी अनुवृत है। वो खाने वाला त्यागी हो सकता है। हाँ, एक मत्स्य दूसरे मत्स्य को नहीं खाने का संकल्पी है तो अनुवृत्ति है वो। ये कथन बहुत सूक्ष्म जाएगा, डीप जाएगा, स्थूल में अपन विचार करेंगे तो कुछ से समझ में नहीं आएगा। एक मत्स्य कुछ प्राणियों को मैं जीवन पर्यंत नहीं खाऊंगा इस प्रकार संकल्प ले लेता है तो व्रत हो गया, वो दृढ़ रहता है उसमें, तो अनुवृत्ति बन गया उसके क्षेत्र में, वह अनुवृत्ति है, वो जाती है तिर्यंच जाती, उसका पंचम गुणस्थान। यदि उसको मांसाहार ही सब कुछ है तो सब तो त्याग नहीं कर सकता, त्याग कर सकता है क्या? नहीं, तो कुछ त्याग करना भी पंचम गुणस्थान बनेगा वहां। तो ऐसा पंचम गुणस्थान बन गया, या नहीं भी बना तो सम्यक दृष्टि है, मान लो अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, रागो मत्स्य को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? जाति स्मरण से हो सकता है, कोई देव आकर के उपदेश देते हैं तो उससे भी हो सकता है, स्वयं ब्रह्मन समुद्र तक देव जाते हैं, देवोपदेश से हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है, और क्या हो सकता है उसमें? दो ही हैं वहाँ। निसर्ग, हाँ, निसर्ग से, पूर्व संस्कार से, जाति स्मरण से हो सकता है। तो ऐसा कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तिर्यंच है और ये दान देने वाला पहले गुणस्थान वाला तिरंच है, ये जा करके उसके लिए उपकार करता है, दान देता है, तो वह जगन्य सुपात्र दान कहलाया। दिया तो कृत से कहलाया, दे नहीं पाया, संपर्क में सम्यक दृष्टि तिरंच जीव नहीं मिल पाया, तो वह अनुमोदना भी करता है, अनुमोदना भी करता है तो वह सुभोग भूमि में जन्म ले सकता है। सुपात्रों में दान देने वाला जीव सुभोग भूमि में पैदा होता है, कुपात्रों में दान देने वाला जीव कुभोग भूमि में जन्म लेता है, पैदा होता है। हो सकते हैं ना, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि वो अनुवृत्ति हो गई। जो मांसाहारी हो और त्याग करते हो, मांस ही जिसका जीवन है, वो उसमें से कुछ त्याग करते हैं तो अनुवृत्ति, सब त्याग करे या कुछ त्याग करे तो अनुवृत्ति बनती है। और जो शाकाहारी हैं तो शाकाहारी हैं, शाकाहार में भी वे कुछ त्याग करते हैं तो वो अनुवृत्ति बनती है, क्योंकि शाकाहार भी हिंसा ही है ना। मांसाहारी जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, किस अपेक्षा से? अहिंसा धर्म के प्रति आस्था जागृत हो गई और उस जागृत होने के कारण से कुछ आचरण में भी लाए तो सम्यक दृष्टि। हाँ, एक देश मांस का त्याग किया तो ये अहिंसा धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, अहिंसा तत्व के प्रति श्रद्धा, यही तत्वार्थ श्रद्धान है। जो मांस खाते हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, वो तो ये समझ रहा है कि मुझे मजबूरी है, किंतु त्याग भी करने के परिणाम है, भाव है, और उसने त्याग भी किया तो ये सम्यक दृष्टि बन गया, अनुवृत्ति भी बन गया। और जिसको हिंसा करने के भाव नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, वो सम्यक दृष्टि है, मजबूरी है, आस्था तो नहीं है, अनास्था उत्पन्न हो गई है। सम्यक दर्शन किसका नाम? अहिंसा के प्रति आस्था का नाम। और उस आस्था को आचरण का रूप देते हैं तो अनुवृत्ति, परंतु थोड़ा बहुत तो स्थूल तो छोड़ना ही पड़ता है। जैसे आठ मूल गुण बताए गए हैं, संतोष जीवन को जीवनी जीने के साधन है, ये स्थूल हिंसा का त्यागी होना आवश्यक है। तो तिरंच यदि पूर्णतः मांसाहारी है, शाकाहारी है ही नहीं, तो वह क्या त्याग करने से, कितने त्याग करने से सम्यक दृष्टि बनेगा? तो स्थूल रूप से, स्थूल हिंसा का त्यागी बन जाए वो, फूलता का त्यागी, यानी उसका जीवन जिसमें पल रहा है वो मांसाहार है, मांसाहार में भी स्थूल हिंसा जिसमें दिखाई देती है उसको त्यागता है वो, तो मूल गुणधारी बनता है, मूल गुणधारी। और ये मूल गुण चतुर्थ गुण स्थान के होते हैं, और विशेष त्याग करने लग गया, वो अहिंसा के क्षेत्र में और बढ़ने लगा तो वह अनुवृत्ति। देखो, दान जो होता है जानबूझकर के तो होता है, उपकार के भाव जो आते हैं तिरंच के मन में वो बुद्धिपूर्वक ही आते हैं। हाँ, व्यवहार में अवश्य परिवर्तन दिखाई देता है। हाँ, कम से कम इतना तो उसके भावों में और उसके आचरण में दिखाई देता है कि ये मांस को ग्रहण करना नहीं चाहता। हाँ, अब किसी तिरंच ने इस प्राणी के मांस को त्याग किया है, फलाने प्राणी के मांस को त्याग किया है, और वह दान में ले आया, तो खाएगा नहीं, वो मरेगा लेकिन नहीं खाएगा। हमने इसको त्यागा है, हम नहीं खाएंगे। और जो बचाया है शैवाल वगैरह ला करके दे दो तो खा लेगा, ऐसे रहते हैं परिणाम। जीव है, आत्मा है, वो भी भगवान बन सकता है। देखो धर्म की यात्रा वहां शुरू हो गई है, उन मछलियों में भी, स्वयंभू रमन समुद्र में भी जैन धर्म है। मांस नहीं खिला रहा है, शैवाल ला करके खिला रहा है, ये जैन धर्म है। हाँ, अहिंसा के भाव ही तो जैन धर्म है। जैन धर्म कहाँ कहाँ छिपा है देखो, तीन लोक के प्रत्येक कोने में आप देख सकते हैं, सब जगह अहिंसा धर्म विद्यमान है। उसी अहिंसा का नाम जैन धर्म। किसके? नहीं, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रथमान योग में भरे पड़े हैं उदाहरण ऐसे मांस त्याग करने वाले जीवों के। श्रेणिक राजा का वो ले लो, कव्वे का मांस का त्याग किया था तो सम्यक दृष्टि था। हाँ हाँ हाँ, वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि का कथन आता है, वाल्मीकि हो गया वो। हाँ लिखा है, पूर्वों में उन्होंने भी मांस का त्याग कर दिया था। नहीं नहीं, पूर्वों में मांस का त्याग करने से यहां पर आकर के वाल्मीकि जीव हुआ। बहुत सारे उदाहरण है, त्रिरंश भी गति है, एक गति है वहां पर भी। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के जीव हैं, समूर्छन भी हैं, पंचेंद्री हैं, संगी हैं, वहां पर भी पांच गुणस्थान बताए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब यहां पर नरक जैसे कथन नहीं है। समूर्छन जीव हो, संगी हो, पांचों गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। गर्भज हो और संगी हो, वह भी पांचों गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। और जिनको एक ही गुणस्थान रहता है और एक से ज्यादा गुणस्थान नहीं हो सकते, ऐसे जीव एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक समझना चाहिए। इनको नियम से एक ही गुणस्थान होता है, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों? तो वहां पर मन भी तो चाहिए ना, मन के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। पहला कंडीशन है मन, पांच इंद्री तो होना ही चाहिए, मन भी मिलना चाहिए सम्यक दृष्टि बनने के लिए। ऐसा जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, अनुवृत्ति भी बन सकता है। त्रिरंच गति का जीव मनुष्य गति का तो मोक्ष भी जा सकता है, देव गति का तो चार ही गुणस्थान तक बढ़ सकता है, संगी पंचेंद्री देव। नरक गति के नारकी चार ही गुणस्थान तक बढ़ सकेंगे, ये यानी पांचवा गुणस्थान दो ही गति में है, ये कहलाया मनुष्य और तिरंज। ये हो गया संख्यात वर्षायुष्क और असंख्यात वर्षायुष्क, दोनों प्रकार के तिरंज पर्याय को धारण कर जन्म ले सकता है। मनुष्य गति में भी संख्यात वर्षायुष्क मनुष्य हो सकता है, असंख्यात वर्षायुष्क मनुष्य भी हो सकता है। यहाँ कर्म भूमि में भी आकर के जन्म ले सकता है वह त्रिरंश जो सम्मूर्छन है और संगी पंचेंद्री गर्भज है। वह कर्म भूमि के सभी कर्म भूमियों में, यानी कर्म मिलेच्छखंड भी कर्म भूमि में आ गए। हाँ, मिलेच्छखंड और आर्यखंड ये दोनों कर्म भूमि कहलाते हैं। 850 मिलेच्छखंड हैं, 850 मिलेच्छखंडों में 170 कर्म भूमियों में मनुष्य बन करके वह जन्म ले सकता है। भोग भूमि में जाएगा तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि में भी जा सकता है। देखो एक राघववत्स मत्स्य मरा सुपात्र दान से, स्वयंभू रमन समुद्र में था, वहां से मरा, जघन्य भोग भूमि में जन्म लेता है तो कहाँ कहाँ लेता है देख लो। असंख्यात द्वीप समुद्र सभी जघन्य भोग भूमियां हैं, और वहां सभी तिरंज हैं, है ना, वहां सब जगह तिरंज हैं, उन तिरंजों में उत्पन्न हो सकता है जगह निभोग सुभोग भूमि का तिरंज, असंख्यात द्वीप समुद्र सभी सुभोग भूमिया वहां उत्पन्न हो सकता है। तो किससे उत्पन्न हुआ, एक मत्स्य कर्म भूमि का वहां समुद्र वाला, दूसरे सम्यक दृष्टि मत्स्य को दान या दानानुमोदना किया उससे यहां पैदा हो गया, या अनुवृत्ति को दान या दानानुमोदना किया। यहां पर भी कई ऐसे तिरंज प्राणी हैं जो कि सुपात्र दान देते समय वो आराम से आकर के बैठकर देखने लगते, बंदर आदि। अगर सच्चे मन से ये वास्तव में उत्तम सुपात्र का ये दानानुमोदना ही कर रहे हैं तो उत्तम भोग भूमि में जाकर के वहां के मनुष्य या तिरंज बन सकते हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो तिरंज बनेंगे, सम्यक दृष्टि हो तो नियम से वो उत्तम भूमि का मनुष्य बन सकते हैं। ये अद्भुत है, ऐसा भी उदाहरण घटा सकते हैं। जैसे आपके घर में एक भैंस है और एक दूध देती है और एक दूध देती नहीं, अभी अभी बंद किया है, उसमें एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, भैंस में भी, हाँ और क्या नहीं रह सकते क्या, एक भैंस सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, एक चतुर्थ गुणस्थान वाला तिरंज है और एक पहले गुणस्थान वाला तिरंज है, और एक भैंस का दूध आपको कम पड़ रहा है तो दूध देने वाली एक भैंस को और लाए आप खरीद करके, तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती थी, उसको ला करके बांधा तो आपके घर में तीन हो गई, पहले गुणस्थान वर्ती भैंस, चौथे गुणस्थान वर्ती भैंस और पंचम गुणस्थान वर्ती भैंस। पहले गुणस्थान वर्ती भैंस ने दानानुमोदना की, कैसे किया, आप बोलते बोलते आ गए, दूध निकालने के लिए आए और परस्पर में चर्चा करते हुए आए, हमको आज सुपात्र दान देना है, मुनि महाराज आए हुए हैं और हमको दूध देना है, और दूध किसका निकाला, दो का निकाला, एक का नहीं निकाला क्योंकि एक ने बंद किया था तो दूध तो मिलने वाला नहीं है, तो दो का दूध निकाला, और तीनों ने सुना कहाँ ले जा रहे हैं आप दूध, पहले ने अनुमोदना की, उत्तम सुपात्र का अनुमोदना की, और दूसरे ने अनुमोदना भी की, दूध भी विशेष रूप से दे दिया उस दिन। आप सोचने लगे, अरे आधा लीटर दूध तो अधिक दे दिया आज इसने, तो आपको क्या मालूम क्यों दिया, उसके भाव पहचान सकते आप, आधा लीटर दूध ज्यादा दे दिया तो इस भावना से दिया, ये तुम खा लो, ये आधा लीटर महाराज को दो हो सकता है ना, क्यों नहीं, संगी पंचेंद्री है वो, हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है, हाँ होता है, ये संगी पंचेंद्री तिरंज हैं। आचार्य से समय सिकर यात्रा कर रहे थे, घटना यात्रा में बीच में एक कुत्ता साथ हो गया, और प्रवचन देते समय आचार्य से के तकत के नीचे ऐसा जा करके बैठ जाता है, जैसे महावीर भगवान का शेर चिन्ह है ना ऐसा आचार्य श्री का वो शेर बन गया, जाकर के बैठता था, उपदेश खत्म होने के बाद भी उठता, वहां से सब लोग उठ गए तो वो भी उठ गए, सब लोग जिनवानी बोलने लगे तो वो भी खड़ा हो गया, और विहार होने लग गया तो आचार्य श्री के साथ साथ आगे चलता था। और समय शिखर की यात्रा की, आचार्य श्री ने 5-6 वंदना की, हर दिन वो साथ चलता था, आचार्य श्री के साथ वंदना की उसने। भव्य जीव होगा। और रात को खाने के लिए लोग डालते थे, कोशिश करते थे खिलाने का, लेकिन नहीं खाता था। हैं? इस रात्रि भोजन त्याग ये चतुर्थ नहीं है? ये छठी प्रतिमा है। चम गुण स्थान तिरंज अगर रात्रि भोजन त्याग करता है वो चतुर्थ में नहीं रह सकता। नहीं खाते, नहीं रात को नहीं खिलाते, खाते भी नहीं है। तो सभी पंचम गुण स्थानवर्ती होंगे वहां। पंचम गुण स्थानवर्ती गौशाला का मतलब गौशाला पार्क है, वो प्रतिमाधारी गौशाला पार्क। भाग्यशाली ही रहते हैं वहां। और उन सब ने निर्णय लिया होगा यहाँ पर रात को नहीं खाना हो तो ही आना। तभी ऐसे एक ही प्रकार के तिरेंच इकट्ठे हो गए वहां, जो सभी पंचम गुणस्थानवर्ती हैं। हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है, हो सकता है। तो उसने 3 भैंसें अनुमोदना की। अनुमोदना करने पर वो तीनों ही मरण के अंत में मरण करके कहाँ कहाँ जन्म लेंगे ये निर्णय कर लो। एक चौथा गुणस्थानवर्ती है, एक पंचम गुणस्थानवर्ती, ये पहला गुणस्थानवर्ती। बोलो। हाँ, देवगति में जाएगा तो भवनत्रिक में जा सकता है। तिरंज गति को बांधने के बाद दानानुमोदना किया है, पहले तिरंज, पहले गुणस्थान वाला, तो वह उत्तम भोग भूमि का तिरंज भी बन सकता है। यदि मनुष्य गति को बंद किया है तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य भी बन सकता है। और देवगति को बंद किया है तो वह भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक जन्म ले सकता है। देखो ऐसा लगाओ इसको। और चौथे गुणस्थानवर्ती का कथन करते हैं। अच्छा, उत्तम भोग भूमि में ही जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं लगा ना? हाँ, वो जितना आयु बांध लेता है उसके अनुसार उस भोग भूमि में जन्म लेगा, वहां का मनुष्य बने या तिरंच बने, लेकिन आयु जितनी बंधती है उसके अनुरूप ही भोग भूमि मिलती है। क्योंकि उत्तम भोग भूमि में अधिक आयु है, मध्यम भोग भूमि में उससे कम है, जघन्य भोग भूमि में उससे कम है, तो आयु के अनुरूप भोग भूमि प्राप्त होती है। अच्छा, अब चलिए चौथे गुणस्थान वाला वह भैंस जो दूध देती थी आपको, हाँ, और आप प्रतिमाधारी थे, पार्क का ही भैंस है समझ लो, उदाहरण है। उदाहरण है। और चौथे गुणस्थान में है वो, और वहां पर महाराज आए, उसने अनुमोदना की, अनुमोदना ही नहीं की बल्कि दूध भी आधा लीटर ज्यादा दिया। तो दान दिया कि नहीं? सुपात्र दान दिया। वो कहाँ जाएगा, किस गति में, बताओ? वो नियम से देवगति में ही जाएगा, नियम से। और कौन से पर्याय में जाएगा? पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक के किसी भी स्वर्ग में जन्म ले सकता है, 16वें तक। अगर हाँ, तो चतुर्थ गुण स्थान में तो मरण होगा ना, जरूरी नहीं है, लेकिन वो वृत्ति है, वृत्ति नहीं है, अविरति है, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है। तो सम्यक तो सहित मरण करेगा यदि पूर्वबद्ध हो, पूर्व में ही देवायु को बांधा हो और चतुर्थ गुण स्थान में मरण किया हो, कर लिया, तो वह 16वें स्वर्ग तक जाएगा। और सहनन भी इसके साथ लगा लेना चाहिए, कम से कम चौथा सहनन तो रहना चाहिए। पांचवा सनन हो तो नहीं जाएगा, फिर पांचवा सनन हो तो 12वें स्वर्ग तक जाएगा और छठा सनन हो तो 8वें स्वर्ग तक जाएगा। सामान्य से हम लगा रहे हैं वो त्रिरिंच है, त्रिरिंच गति के त्रिरिंच तो अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं, चाहे कोई भी सनन हो, मतलब अधिक से अधिक हाइएस्ट सनन कोई भी हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक कोई भी हो, वो तो केवल 16वें तक ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। अब ये हो गया पंचम गुणस्थान वर्ती जो त्रिरिंच है, तो वह किस गति में जाएगा? वो भी देव गति में ही जाएगा, पहले से 16वें स्वर्ग तक। अब ये वृत्ति है, ये पूर्व में पूर्वबद्ध आयु वाला यदि होता है तो कौन सा आयु वाला हो सकता है? जिन्हें पूर्व में देवायु को बांधते हैं तो अनुवृत्ति बन सकते हैं। पूर्व में त्रिरिंच आयु, मनुष्यायु और नरकायु को यदि बांध लेते हैं, इन तीन में से कोई बांध लेते हैं तो अनुवृत्ति नहीं बन सकते, ये भी नियम ध्यान में रखना है। भाव ही नहीं होंगे ये, तो वह कहां जाएगा? अनुवृत्ति है तो नियम से उस दानानुमोदना के फलस्वरूप, आधा लीटर के फलस्वरूप, केवल आधा लीटर दूध के फलस्वरूप, ज्यादा भी नहीं और एक ही दिन, यदि नहीं भी देती वो भैंस और अनुमोदना कर लेती तो भी स्वर्ग आदि में, मतलब पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक के किसी स्वर्ग में जन्म लेगा वो। दान का कितना महत्व है, दान से देखो पर्याय बदल जाती है जाने की। यदि कुपात्र में दान देता है और समझदारी आ गई कि कुपात्रों में दान नहीं दिया जाता, सुधर गया, परिणामों को सुधार लिया और बाद में सुपात्र में दान देना शुरू कर दिया, और आयु को बांधते समय पूर्व कोटि से कुछ अधिक आयु को बांध लिया, किस आयु को? मनुष्य आयु को, तो वह त्रिरिंच भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, या पूर्व कोटि अधिक आयु को बांधकर त्रिरिंच आयु को बांध लिया तो वह भोग भूमि का त्रिरिंच बन सकता है, तो जगन निभोग भूमि में जाएगा। पूर्व कोटि के ऊपर थोड़ा सा आयु भी ज्यादा बढ़ गया तो जगन निभोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। देव गति का हो गया, मनुष्य गति का भी हो गया। मनुष्य, मनुष्य को भी समझ लो, पहले गुणस्थान वर्ती एक मनुष्य है, चौथे गुणस्थान वर्ती एक मनुष्य है और पंचम गुणस्थान वर्ती एक मनुष्य है, ये दान भी करते हैं। इसमें देखो तीनों में पात्र कितने हैं, सुपात्र कितने हैं, बोलो कैसे? एक पहले गुणस्थान में है, एक चौथे में है, एक पंचम में है, इसमें सुपात्र कितने हैं बताओ? दो सुपात्र हैं, यानी दो पात्र भी हैं और दो दाता भी हैं, यही दो दाता भी हैं और यही दो पात्र भी हैं, ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं ऐसे। और पहले वाला दाता तो बन सकता है लेकिन पात्र नहीं है, ये कुपात्र कहलाता है। कुपात्र का क्या लक्षण? ये मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसने बाह्य अनुवृत या महावृत को धारण किया है किंतु पहले गुणस्थान में रहता है, ये कुपात्र कहलाए। कुपात्र सम्यक्तु से रहित रहता है और वृतों से सहित रहता है, सम्यक्तु से रहित और वृतों से सहित, अनुवृत या महावृत से सहित। तो ये पहले गुणस्थानवर्ती मनुष्य दान देगा तो उत्तम भोग भूमि में जा सकता है, सुपात्रों में दान देगा तो, और कुपात्र में दान देगा तो कुबौ घूमे में भी जा सकता है। अब शेष रही बात इन दोनों की, चौथा गुणस्थान वाला मनुष्य कुपात्रों में दान देगा तो कहां जाएगा? देखो सोच के उत्तर देना। सम्यक दृष्टि कुपात्र में दान देता है तो कहां जाता है? इसका उत्तर सम्यक दृष्टि, करेक्ट उत्तर दिया, सम्यक दृष्टि कुपात्रों में दान दे ही नहीं सकता दे ही नहीं सकता, भावी नहीं बनेंगे, वो ज्ञानी है ना, समझदार है, कुपात्र पात्र का ज्ञान है, कुपात्र सुपात्र अपात्र क्या होता है इसका ज्ञान है, इसलिए दे ही नहीं सकता। दे कौन सकता है? जिनको ज्ञान नहीं है, भेद भिन्नता मालूम नहीं है, कुपात्र अपात्र सुपात्र का भेद भिन्नता मालूम नहीं है, वो देता है। चौथे गुणस्थान वर्ती ये सम्यक दृष्टि सुपात्र में ही देता है, तो सुपात्र में दान देगा तो कहां जाएगा? अविरत सम्यक दृष्टि चौथी गुणस्थान वर्ती है। देवायु को यदि बांधा हो तो देवगति में भवनत्रिक से हाँ सम्यक दृष्टि है ना, हाँ सम्यक दृष्टि है तो पहले से 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, सम्यक दृष्टि है, ठीक। देवायु बांधा हो तो पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, यदि त्रिरंच आयु को बांधा हो तो सुनो 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 सुनो, बाद में पूछना ये विषय पहले सुनो। सम्यक दृष्टि देवायु को बांधा है तो कहां जा, देवगति को यदि बांधा है तो ये मनुष्य कहां तक जाएगा? पहले से 16वीं तक सुपात्र दान से। ये सुपात्र दान तीन प्रकार की, उत्तम मध्यम जगन, और जो देने के अयोग्य होते हैं वो दो ही प्रकार के, अपात्र और कुपात्र। अपात्र, अपात्र का क्या लक्षण? जिनमें व्रत भी नहीं होते और सम्यक तो भी नहीं होता, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव अविरत है, यानी कोई व्रत आदि नहीं है। पात्रता गुणों से आती है और गुण है तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन गुण हैं, गुणों से पात्रता आती है। ये तीन गुण है तो सुपात्र, इन तीन में से कोई भी नहीं है तो अपात्र या कुपात्र, इस प्रकार लक्षण है। तीन गुण न होकर केवल बाह्य व्रत धारण करता है तो वो भी गुण के कोटि में तो नहीं आता, व्रत की कोटि में तो आएगा लेकिन वो मिथ्यात्व रूप है, व्रत द्रव्य त्याग है, द्रव्य व्रत है, भाव व्रत उसके साथ न होने से वो द्रव्य व्रत मिथ्या ही कहलाते हैं। तो व्रत तो है हाँ द्रव्य व्रत रखता है, हाँ पंचम गुणस्थान से या छठे गुणस्थान से आकर यहां ठहरा चौथे में तो भी द्रव्य व्रति है, किंतु सम्यक दृष्टि है ये, ये न कुपात्र है न अपात्र है। हाँ फिर कौन सा पात्र है? सुनो सुनो नहीं सुनो सुनो, बाद में पूछो उसको, यहां पर इसको सुन लो जो चल रहा है, इसको पहले सुनो। बोलो पंचम या छठे गुणस्थान से आकर चौथे में ठहर गए, द्रव्य व्रत तो सुरक्षित हैं, ये कौन सा पात्र? जगन्य सुपात्र, कैसे कह सकते हैं? जगन्य सुपात्र का लक्षण अलग है, जगन्य सुपात्र में व्रत नहीं होते और केवल सम्यक दर्शन होता है, उसको जगन्य सुपात्र कहते हैं, और मध्यम सुपात्र में अनुवृत होते हैं और सम्यक दृष्टि रहता है, भाव अनुवृत भी और द्रव्य अनुवृत भी रहते हैं, वो मध्यम सुपात्र है। और उत्तम सुपात्र तो मुनि है, जो भाव व्रत को भी धारण करते हैं और द्रव्य व्रत को भी धारण करते हैं, वो मुनि है सम्यक दृष्टि, तो छठे में उत्तम सुपात्र। तो छठे में या पंचम में रहने वाला जीव चौथे में आकर के ठहर गया, और द्रव्यव्रति तो है, द्रव्यव्रत का पालन कर रहा है, उसको त्याग देगा तो बात अलग है, तब तो हम जगन सुपात्र कह सकते। त्यागा नहीं है, व्रत सहित है वो। अब ये कौन सा पात्र में बैठता है देख लो, चिंतन करो है? कोई सा पात्र नहीं है ये। हाँ, पात्र है लेकिन इनमें से कोई सा पात्र नहीं है। पात्र तो है, कैसा पात्र है? स्थितिकरण पात्र है, स्थितिकरण का पात्र है। व्रति हो और व्रत के अनुरूप उसका हाँ व्रत जब मालूम होते हैं, नहीं मतलब भाव जब पता चलते हैं, उनके कहने से तो पता चलेंगे ना। वो उनके द्वारा पूछने पर पता चलेंगे कि नहीं? तो अगर मान लो पता चल गया तब तो है ना। हाँ, स्थितिकरण का पात्र है। अब स्थितिकरण करो फिर बाद में दो, ऐसा है। और यदि स्थिति करण के उद्देश्य से देते हैं तो वो सुपात्र दान ही है। स्थिति करण का उद्देश्य को भूल करके अगर दे दिया जाता है तो फिर तो कुपात्र दान हो जाएगा। नहीं, कुपात्र दान नहीं, सम्यक दृष्टि है वो स्थिति करण का पात्र है। स्थिति करण के दृष्टिकोण से दे रहे हैं, यानी वहां तक देना क्षम्य कहलाया। स्थितिकरण का पात्र है ना, वहां तक देना तो क्षम्य है, सम्यक दृष्टि है वो। हाँ, मध्यम पात्र के लक्षण नहीं है उसमें, गुणस्थान की अपेक्षा से भले कहो कि चौथे, सुनो सुनो, चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में आने के बाद क्या तद्वत प्रतिमा का आचरण नहीं रहता भाई? फिर कैसे कहेंगे मध्यम सुपात्र, जगन सुपात्र कैसे कहेंगे? जगन सुपात्र का लक्षण है जिनमें व्रत ही नहीं है, तो यहां पर तो व्रत ही है, तो इनको मध्यम नहीं कह सकते, इनको मध्यम नहीं कह सकते। और जगन्य कहना चाहो तो जगन्य का भी लक्षण नहीं है, क्योंकि अनुव्रत बाहर पालन को प्राप्त हो रहा है। लक्षण की अपेक्षा से तो घटित नहीं होगा, इसलिए इसको कहना चाहिए कि ये स्थितिकरण का पात्र है। इसको स्थितिकरण ऐसा शब्द दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि यदि है तो स्थितिकरण का प्रयत्न तो किया ही जाता है। यदि नहीं भी होता है, स्थितिकरण के उद्देश्य आपने दे दिया तो आपको दोष लगने वाला नहीं। स्थितिकरण को भूल करके अगर आप करते हैं तो दोष भी लगेगा। करण को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, वो भी तो उपकार है ना, स्थितिकरण करना, स्थितिकरण अंग अपना भी है, तो उसका क्या काम कर रहे हैं हम? स्थितिकरण करना चाहिए। आपका पूछो थोड़ा। देखो आपको दान के भेद मालूम नहीं है। संस्था सुपात्र अपात्र कुपात्र में से कौन सा है बोलो? ये बैठती नहीं ना, तो वो अलग बात है, वो लोकोपकार है। वहां पर पात्र बुद्धि से दान नहीं दिया जाता, यहाँ पर पात्र बुद्धि से दान देने को पात्र सुपात्र कुपात्र अपात्र होता है। कुपात्र को भी दे रहे हैं तो पात्र बुद्धि से दिया जाता है, अज्ञानता से दिया जाता है, इसलिए कुभोग भूमिका बंद होगा। और यहाँ पर वृत्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं इसका सवाल है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमको पात्र दान करना है इस बुद्धि से जा रहे हैं, वहां ऐसा नहीं, लोकोपकार करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कई प्रकार की संस्था हैं जो लोकोपकार के दृष्टिकोण से खुले रहते हैं। जैसे एक साथ भूकंप हो गया तो एक एक संस्था होती है, उस संस्था में आप दान राशि देते हैं कि नहीं, तो जीव कल्याणार्थ है। जैसे गौशाला में हर पशु को पकड़ करके आप उपकार करते हैं कि नहीं, तो उसमें मिथ्या दृष्टि हो तो उपात्र दान होगा क्या? ऐसा नहीं, वो करुणादान है। करुणादान दयादान अलग बात है, लोकोपकार भी अलग बात है, वो सामाजिक व्यवस्था है। जैसे सामुदायिक एक सामाजिक व्यवस्था आप अपना बना लेते हैं तो वहाँ पर पात्र की चर्चा नहीं होती, वहाँ पर लोक समुदाय की चर्चा होती है कि भौतिक रूप से हम सुख का साधन कैसे अपना सकते हैं और कैसे सुखी रह सकते हैं, एक व्यवस्था बना करके चलते हैं। जैसे विद्यालयों में आप शिक्षण के लिए वो देते हैं तो लोकोपकार है, वो ये भौतिक दान है। यहाँ परमार्थ क्षेत्र में जो दान की चर्चा चलती है, यहाँ पर तीन भेद हैं, सुपात्र कुपात्र अपात्र। सुपात्रों में तीन प्रकार के सुपात्र बताए जाते हैं, उत्तम मध्यम और जगन, ये अलग है। यहाँ पर धर्म बुद्धि से है, वहाँ पर दया बुद्धि से है। का फल, उसका फल अच्छा ही तो है, बंद पुण्य कर्म का बंद है और अंतराय कर्म का क्षोभशम है, शुभ कर्म का बंद है, अंतराय कर्म का क्षोभशम है, क्योंकि लोकोपकार लोकोपकार ही है, परिणाम शुभ है, इसलिए आपको पुण्य का बंद हो रहा है। और सुपात्र दान ये आपको इतना पुण्य का फल देता है, इतना अंतराय कर्म का क्षोभशम बढ़ जाता है कि वह एक बीज बोया हुआ वटवृक्ष बन जाता है, ऐसा उदाहरण दिया रत्नकर श्रावकाचार्य ने। सुपात्र दान की महिमा तो अलग ही है, गजब की है। हाँ, भाव विशुद्ध होते हैं और हाईएस्ट है ना, वो क्वालिटी है, वहाँ दान का क्षेत्र क्वालिटी का क्षेत्र है। वो देखो सब जगह तो आजकल भ्रष्टाचारी चल रही है, यदि हम अपना दान देंगे और भ्रष्टाचारी वहाँ हो रही है और फिर भी दे रहे हैं और फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हमको पाप लगेगा, तो कैसे लगेगा आपको बताओ, आप ही बताओ। नहीं, वो भी ईमानदारी से हो, जो दिया जा रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो पाप तो लगेगा ना, नहीं देने से तो पाप से बचेंगे आप। और नहीं देना पड़ता, ये मजबूरी अलग बात है। आप क्या पूछ रहे हैं कि पाप या पुण्य का बंध होता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, आप परमार्थ के दानों को मिक्स मत करना, इसमें अलग अलग रखो इन दोनों को। लोकोपकार को आप परमार्थ में ला देते हैं या परमार्थ को लोकोपकार में डाल देते हैं, जो खिचड़ी बन जाती है, समझ में ही नहीं आता क्या व्यवस्था है ये। ऐसा नहीं, ये तीन पात्र अलग हैं, धर्म बुद्धि से होता है ये। यहाँ कुपात्र अपात्र में भी दे रहे हैं तो कुपात्र को जो वेशधारी है उसको दान दे रहे हैं तो धर्म बुद्धि से ही दिया जाता है ना, तो यहाँ पाप लग रहा है, यहाँ पुण्य घट रहा है। पुण्य लग रहा है कुपात्र दान देने से, उपकार होने से, लेकिन दाता को कुभोग भूमि का जो क्षेत्र है वो दुखदायक है, वो फल मिल रहा है कुपात्र दान से। तो यहाँ लोकोपकार वाली वो बातें यहाँ नहीं लाना, उसमें पुण्य का ही बंध होगा आपको। परंतु ऐसा पुण्य भी नहीं जो सुपात्र दान देते समय लगता है, ऐसा पुण्य का बंध। हाँ, इसमें भी खिचड़ी नहीं बनाना कि पुण्य एक सा है वो। पुण्य को भी अलग अलग रखना, वहाँ क्वालिटी है सुपात्र दान देते समय और यहाँ क्वालिटी वाला पुण्य नहीं है, ये तो सामान्य उपकार वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये सुनो सुनो, क्वेश्चन है, नहीं नहीं देता आपका। कोपचार कौन कहलाता है? लोकोपकार, लोकोपचार नहीं, लोकोपकार, लोक के लिए उपकार हो ऐसा जो दान क्षेत्र हैं, जैसे विद्यालय, जैसे सामुदायिक रूप से कोई घटना घटी, भूकंप आदि हुआ तो उस संस्था में आपने दान राशि दे दिया जीव रक्षा के लिए, जीव उपकार के लिए, तो ये लोकोपकार इसमें आता है। और कुदेवादेव जो होते हैं उसमें जब देओगे तो वो तो अनर्थ है। क्या बोले? हाँ, वो बात अलग है, वो प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। हाँ, वो प्रश्न अलग है। फिर आप श्रद्धा से दे रहे हैं तो पाप तो कर रहे हैं। हाँ, आस्था है उसके प्रति या तो भय है? भय है, आस्था है, भय है, दोष तो लगेगा ना, समर्थन तो होगा ना। आस्था है, भय है, संकोच है, लज्जा है, कौन क्या कहेगा ये ज्यादा है, तो ये तो सम्यक्त्व के दोष हैं ही। हो गए क्वेश्चन? हाँ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।
ये चपेदा से चपेदा से।